भारतीय सेना में एक रवायत है कि वहां जब कमांडोज को ट्रेन किया जाता है तो उन्हें विपरीत परिस्थितियों में जीवित रहने के सभी गुरों के साथ साथ सांप को मारकर खाना भी सिखाया जाता है। ऐसा विश्वास है कि अगर एक कमांडो ने सांप को मारकर खा लिया तो वो इस दुनिया में कुछ भी कर सकता है। 11 अक्टूबर 1987 की रात पलाली श्रीलंका में मौजूद 10 पैरा कमांडोज को जाफना विश्वविद्यालय में एलटीटी के मुख्यालय पर नियंत्रण करने की जिम्मेदारी दी गई। उड़ान भरने से पहले हुई सभा में कमांडोज ने अपना युद्ध नारा दुर्गे भवानी की जय लगाया और रात 1 बजे 2 MI हेलीकॉप्टरों ने 50 सैनिकों के साथ जाफना के लिए उड़ान भरी। वो मात्र 200 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे थे। अभियान को गुप्त रखने के लिए हेलीकॉप्टर्स की सारी बत्तियां बुझा दी गई थीं। मिशन ओवरसीज डेयरिंग ऑपरेशन ऑफ द इंडियन मिलिट्री के लेखक और इंडियन एक्सप्रेस अखबार के सह संपादक सुशांत सिंह बताते हैं।
एक फौजी टर्म होता है पाथफाइंडर, तो जो पैरा कमांडोज थे वो पाथफाइंडर थे इस ऑपरेशन के लिए। मेजर ऑपरेशन सिखलाई की यूनिट ने कंडक्ट करना था। पाथफाइंडर का काम ये होता है कि आप जाकर उस जगह को उतरने के बाद मार्क करें और वहाँ पर बताएं कि भाई इस जगह उतरने के लिए ठीक है। तो दो दो के टर्न्स में 2 हेलीकॉप्टर्स की वेव्स आके उतरनी थी। पहले 2 हेलीकॉप्टर जब उड़ने शुरू हुए और वो जब मेडिकल कॉलेज की जो बिल्डिंग है उसके ऊपर से उड़े तो वहाँ से फायर आया, पर वो हेलीकॉप्टर की आवाज़ में इतना सुनाई नहीं पड़ा और स्पोरैडिक फायर था। वो फायर की वजह से ये दोनों हेलीकॉप्टर उतर गए। पर जब ये हेलीकॉप्टर से दोनों ये दस्ता उतर गया 50 लोगों का, और जब इन्होंने वो मार्किंग के लिए गूज लैंप जलाने की कोशिश की तो इन पर बहुत जोर का फायर आया। तो मेजर शेनॉन ने वहीं पर डिसीजन लिया, वहीं निर्णय लिया कि भाई मैं ये नहीं जला सकता हूँ कि अगर मैं इनको जलाऊंगा तो इसकी वजह से ही हमारे ऊपर ही निशाना लगेगा और हम मारे जाएंगे। तो उसकी वजह से उन पर जो दूसरा जो हेलीकॉप्टर की जो टीम आई उसको वो निशाने दिखे ही नहीं जिनको देख करके उनको उतरना था, उसकी वजह से वो वापस चले गए। और तब तक ये उम्मीद ये थी कि दूसरी टीम आएगी, तीसरी टीम आएगी, पर फिर से जो पहला दस्ता था वह पहले 2 हेलीकॉप्टर का दस्ता वापस आता है और उस बार उस पर बहुत ही ज़बरदस्त गोलाबारी होती है। उसके हेलीकॉप्टर्स के अंदर छेद हो जाते हैं, उनके पायलट्स बड़ी मुश्किल से बच पाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा समस्या होती है। पर इसके साथ सिखलाई के 31 जवान आए हुए थे जो उतरते हैं।
जैसे ही पहला हेलीकॉप्टर सतह के 10 मीटर ऊपर आया सभी कमांडोज रस्सी के सहारे नीचे उतरने लगे। जैसे ही कैप्टन रणबीर भदौरिया नीचे उतरने के लिए कूदे उनका पैर लटकी हुई रस्सी में फंस गया।
मैं नंबर 1 था एग्जिट के लिए। एयरबोन ऑपरेशन में जो सबसे सीनियर होता है जहाज में सबसे पहले वो जंप करता है, तो मैं सबसे पहले आगे था। मैंने रोप जैसे ही नीचे गिराया उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं हम हेलीकॉप्टर को लैंड करेंगे। तो जब हेलीकॉप्टर लैंड होता है तो डाउन ड्राफ्ट बहुत ज्यादा होता है हवा का। उस डाउन ड्राफ्ट में जो लंबी रोप थी मेरे पैर में उलझ गई थी। मेरे पीठ के ऊपर मेरा पैक था, उसमें मेरा कमांडो डैगर था और मैं देख रहा था कि पहला आदमी, दूसरा आदमी, तीसरा आदमी, चौथा आदमी, हम लोग 33 आदमी थे उस एयरक्राफ्ट में पूरे सामान के साथ। और जब आखिरी आदमी निकल रहा था मैं सोच रहा था अब मेरे पास 2 ही रास्ते हैं, या तो मैं अंदर इसके अंदर चला जाऊं या इसी जहाज के नीचे लटकता हुआ चला जाऊं, क्योंकि अगर मैं अंदर जाता हूं तो लोग बोलेंगे कि यार फायर आ रहा था, साहब सबसे पहले नीचे गए और फायर की वजह से वापस चले गए हेलीकॉप्टर के साथ। तो मैं बहुत दुविधा में था कि किस तरह, डैगर था वो पीछे पैक में था, उसको निकाल नहीं सकता था मैं। पर इत्तेफाक की बात है, ऊपर वाले की दुआ थी कि आखिरी वक्त में जब आखिरी आदमी निकल रहा था मैं उस उलझन से अपने आप को निकाल सका और निकल गया।
जैसे ही लैंडिंग हुई टीम लीडर मेजर शिवनान सिंह ने पाया कि उन पर LTTE की ओर से जबरदस्त फायरिंग हो रही है जिसे वो हेलीकॉप्टर के शोर में सुन नहीं पा रहे थे। उन्होंने अपनी घड़ी की ओर देखा, उस समय रात के 1:20 हुए थे। उनको जिम्मेदारी दी गई थी कि वो मार्कर से लैंडिंग एरिया में रोशनी पैदा करें ताकि वहां दूसरे हेलीकॉप्टर उतर सकें। जैसे ही उन्होंने ये करने की कोशिश की उन पर जबरदस्त फायर आया। नतीजा ये रहा कि उन्हें रोशनी करने की योजना त्यागनी पड़ी। जब तीसरा हेलीकॉप्टर वहां पहुंचा तो उसे उतरने की जगह ही नहीं दिखाई दी और वो 53 कमांडोज के साथ वापस पलाली लौट गया। कर्नल रणबीर भदौरिया याद करते हैं।
रेहान साहब, हमने जब 1 बजे रात को वहाँ लैंडिंग की, हमने इंतजार किया। दूसरी बटालियन जिसके की 13 सिखलाई के जवान जो हमारे साथ लैंड कर गए थे वो आएंगे, उनका लिंकअप होगा। तो हमें ऑर्डर मिल गया था कि आप लोग अपने टास्क पे जाइए, ये टुकड़ी जो है ये अपनी पेरेंट यूनिट के साथ लिंकअप कर लेगी। जब आगे निकले तो आगे उनका एक कम्युनिकेशन टावर था जिसको कि मेरे टीम कमांडर ने बोला कि आप इसको गिरा दीजिए। तो मेरे पास एक्सप्लोजिव था, हम गए, देखा तो दूर तकरीबन 50-60 गज के ऊपर कुछ सेंट्री खड़े हुए थे। खैर, हम नीचे क्रॉल करते हुए गए, जाके उसके ऊपर एक्सप्लोजिव लगाया और एक्सप्लोजिव लगा के वापस आ गए। चंद एक मिनट के बाद धमाका हुआ और वो जो कम्युनिकेशन टावर था वो नष्टाभूत हो गया। हमने आगे बढ़ना शुरू किया, वो एरिया था कोकोवेल का एरिया था। उस लेन के अंदर जैसे ही हम घुसे थे सामने से दोबारा से फायर आया, हम लोग अंदर गए और अंदर जो मिलिटेंट थे सिविल ड्रेस में थे उनका हमने सफाया खत्मा कर दिया। तब तक पीछे से उन्होंने बोला मैं आपके लिए चाय भेज रहा हूँ। उन्होंने चाय भेजी, रात से कुछ खाया नहीं था, पानी नहीं पिया था। मैं बैठा ही हुआ था और जैसे ही मैं उठा उस कुर्सी से मेरे ऊपर एकदम फायर आया, सब तरफ से हमारी जो वो मकान था उस पर फायर आना शुरू हो गया। हम सिविलियंस के ऊपर फायर नहीं करते थे जब तक हम उनके ऊपर उनके साथ हथियार नहीं देख लेते थे। तो हमने बहुत से सिविलियंस देखे जाते हुए, हमने कहा जा रहे हैं, इतना तजुर्बा नहीं था कि इनकी लुंगी के नीचे इनके हथियार छुपे हुए हैं। जब उन्होंने एक दफे असॉल्ट करने की कोशिश की तो हमारी जो लाइट मशीन गन थी उसका जो गनर था वो उसको गोली लग गई थी। तो मैं चला रहा था उस गन को, बैरल लाल हो गई थी। तो उसने कहा कि इसको जनाब चेंज कर दीजिए। मैंने कहा नहीं, अभी चेंज मत करो, इसमें गुड लक है, ये बहुत अच्छा चल रही है और सही निशाने पे लग रहे हैं इसपे।
इसके बाद शिवनान सिंह और उनके कमांडोज ने LTTE के ठिकाने की ओर बढ़ना शुरू किया। रास्ते में उन्हें घर दिखाई दिया जो वहां के पॉलिटेक्निक के एक प्रोफेसर का घर था।
उनको एक प्रोफेसर मिलता है जो कि जाफना यूनिवर्सिटी में पॉलिटेक्निक में पढ़ा रहा था। उस प्रोफेसर के घर में जाके ये उससे पूछते हैं कि भाई LTTE कहाँ है। तो वो कहता है कि भाई देखिए आप गलत दिशा में जा रहे हैं, LTTE तो यहाँ नहीं, LTTE तो दूसरी दिशा में है। पर उस दिशा में जाने की बात मानने से पहले ये उस प्रोफेसर से पूछते हैं कि आप मुझे 3 या 4 रास्ते बताइए उस जगह जाने के जहाँ बोल रहे हैं कि LTTE का हेडक्वार्टर है, क्योंकि इनको शक था कि शायद एक ट्रैप हो सकता है जिसमें कि ये फंसाने की कोशिश कर रहे हो। और साथ में ये कहते हैं कि हम आपके दामाद को बंदूक की नोक पर लेके चलेंगे कि अगर हमारे ऊपर गोली आई कहीं से, अगर आपने हमें धोखा देने की कोशिश की तो आपके दामाद की खोपड़ी उड़ा दी जाएगी। जैसे ही उसको लेके चलते हैं, थोड़ी दूर जाते हैं, गोलीबारी शुरू हो जाती है, LTTE के फाइटर्स इन पर गोली चलाते हैं और जो जवान जो कि राइफल पीछे लेके चल रहा था उस दामाद के पीछे, वो उसके दामाद का सर उड़ा देता है।
जैसे ही यहां से कमांडोज आगे बढ़े 70 गज की दूरी पर एक झोपड़ी से उनके ऊपर जबरदस्त फायर आया। भदौरिया ने अपने रॉकेट लॉन्चर से उस झोपड़ी पर 3 फायर किए। फायरिंग तो रुक गई लेकिन उसके अंदर रह रही औरतों और बच्चों की चीखें दूर तक सुनी जा सकती थी। भदौरिया और उनके कमांडो एक और घर में घुसे और वहां मौजूद हर व्यक्ति को मार डाला। तभी उनके साथ एक ऐसी घटना घटी जिसे वो आज तक नहीं भूल पाए हैं।
ये लोग पहली जो इनको बिल्डिंग जो इनको इलाका मिला उस इलाके में घुसने लगे और उस इलाके में घुसे तो इनके ऊपर मेजर शेनॉन और कैप्टन भदौरिया के ऊपर एक व्यक्ति अपनी एक LTTE का फाइटर आया जो कि राइफल से फायर करते हुए आया। इन्होंने उसको इमीडिएटली गोली मार दी, इनके ऊपर पूरे खून के चिथड़े विथड़े भी आ गए और पूरा खून इनकी यूनिफॉर्म पर भी आ गया। उसके बाद इन्होंने हर घर में घुस के उसको खाली साफ करने की कोशिश की और जो भी बड़ा बूढ़ा जो भी इनके सामने पड़ा उसको इन्होंने, क्योंकि उस वक्त इस तरह का माहौल था, हर तरफ से गोलीबारी चल रही थी, इन्होंने ये उन घरों में पोजीशन लेना चाहते थे तो इन्होंने उस तरह से लोगों को उड़ा दिया। कैप्टन रणबीर भदौरिया एक ऐसे जगह पहुंचे जहां पर रसोई घर में एक महिला अपने 2 साल के बच्चे के साथ, 2 साल का बच्चा जो कि उनकी महिला की साड़ी का पल्लू पकड़े हुआ था, वो खड़ा था। तो इंस्टिंक्टिवली उन्होंने गोली चलाई और जिससे कि उस महिला की मौत हो गई। पर कैप्टन भदौरिया की हिम्मत नहीं हुई कि वह उस बच्चे की ओर गोली चला सकें क्योंकि उनका भी, कैप्टन भदौरिया का खुद का बच्चा भी उस वक्त उसी उम्र का था। तो उन्होंने अपने बड़ी जो कि एक ट्राइबल थे बिहार से उनकी ओर देखा और उनके बड़ी ने उसको, उस 2 साल के बच्चे को गोली मार दी।
मैंने आजकल सीतापुर में रह रहे कर्नल रणबीर भदौरिया से संपर्क कर इस घटना का विवरण मांगा।
जब एक दफे फायर खुल जाता है आदमी देखता नहीं है किधर गोली जा रही है क्योंकि उसकी खुद की कैजुअलिटी इतनी हो चुकी होती है, वो सिर्फ अपना जुनून है वो निकालता है। मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही थी कि भाई इनको किसी को मारो क्या करो, तो मैं बाहर की तरफ निकल आया। जब वापस आया तो देखा कि वो महिला और वो बच्चा दोनों मरे हुए थे। खैर, जंग में ये सब चीजें हो जाती हैं और उसका दुख हमेशा रहता है। कई दफे अकेले में बैठ के सोचता हूँ तो लगता है कि क्या सच था क्या गलत था, पर इसमें तो कहते हैं जब गेहूं पिसता है तो उसके साथ घुन भी पिसता ही है।
इस बीच जाफना ग्राउंड पर मेजर बीरेंद्र सिंह की सिख एलआई की बटालियन को एलटीटीई ने चारों ओर से घेर लिया था।
देखिए बीरेंद्र सिंह की जो टुकड़ी थी, सुबह होने पर जैसा कि मेजर शेनॉन का अंदेशा था और जैसा कि बाकी लोगों का अंदेशा था कि वो नहीं टिक पाएंगे क्योंकि चारों तरफ से वो एलटीटीई से घिरे हुए थे। ऐसा माना जाता है कि जब आखिरी तीन जवान बचे थे तो उन तीन जवानों ने एक बिल्कुल ही सुसाइडल हमला करने की कोशिश की और एमएमजी को लेकर और जाकर उस एलटीटीई की टुकड़ी के ऊपर, पर उसमें वो नहीं सक्सीड हो पाए और वो दोनों वहां मार दिए गए। सिर्फ एक जवान गोरा सिंह उसको जिंदा कैप्चर कर लिया एलटीटी ने, जिससे कि वो समझने की कोशिश कर रहे थे कि जो आप ये लोग चलाते हैं एमएमजी वगैरह, इसका कैसे कार्रवाई होती है, इसको कैसे चलाते हैं। कहा जाता है कि सिर्फ उसको सीखने के लिए उन्होंने उसको जिंदा रखा और उसको अगले एक महीने बाद जबकि प्रिजनर्स एक्सचेंज हुए तो उस एक्सचेंज में वापस भेज दिया गया और उन्होंने बाद में, गोरा सिंह ने बाद में भी फौज में नौकरी जारी रखी। वो अकेले थे जो कि उस इलाके से जो वहां पर जिंदा बचे और बाकी लोगों की लाश का क्या हुआ ये भी आज तक किसी को पता नहीं है।
इस बीच मेजर शिवनान सिंह को ख्याल आया कि पलाली में 54 आर्टिलरी ब्रिगेड मौजूद है और उनके पास तोपे हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने आर्टिलरी फायर की मांग की उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई जब उन्हें पता चला कि तोपे तो हैं लेकिन उनका गोला बारूद भारत से आया ही नहीं है। श्रीलंका की सेना ने उन्हें कुछ मोर्टर्स गन उपलब्ध कराई लेकिन उनके गोले खुद भारतीय सेना के ऊपर गिरे। मैंने कनेक्टिकट अमरीका फोन कर मेजर जनरल शिवनान सिंह से संपर्क किया।
थ्योरी में पढ़ा था कि गन को कैसे कंट्रोल करते हैं तो हमें कुछ पता नहीं था। हमारा उनके साथ रابطہ रेडियो के ऊपर हो गया और हमने उनसे फायर मांगा। जब उनका हमें ये भी नहीं पता लग रहा था, हमने उनसे कहा भी स्मोक फायर करो ताकि हम देख सकें कहाँ हो रहा है। तो हमारे कुछ लड़कों को हमने छत पे चढ़ा दिया, मैं नीचे बैठा हुआ था। उन्होंने बताया जी गोला यहाँ पे गिरा है तकरीबन इतनी दूर। तो हमने उनको जो था वो नॉर्थ साउथ कह के उनको बोला भी 50 गज जो है आप हमारी तरफ साउथ में गोला गिराइए। लेकिन मुझे इस वक्त ये पता नहीं था कि मैं 25 गज भी कह सकता हूँ। मैंने 50 गज कहा क्योंकि ऐसा ही प्रैक्टिस में करा करते थे। तो जो 50 गज वाला गोला था वो तकरीबन उसी घर के ऊपर आके गिरा जिसमें हम लोग बैठे हुए थे। इत्तफाक से घर के ऊपर नहीं गिरा, बाहर की तरफ गिरा और हमारे तीन जवान जिन्होंने वहाँ पोजीशन ले रखी थी उसमें से दो की जो है जान, मतलब एक तो बुरी तरह से जख्मी हो गया और एक के पैर कट गए उसमें।
इस बीच कमांडोज को लड़ते 37 घंटे बीत चुके थे। उन्हें वापस लाने के लिए 3 टैंक भेजे गए लेकिन उन टैंकों में भी कुछ न कुछ नुक्स थे।
जब इनको हुक्म मिला चलने का तो काफी बरसात वगैरह हो रखी थी तो टैंक्स में स्कर्ट प्लेट्स होती हैं जो साइड से प्रोटेक्शन देती हैं उसको के ट्रैक वगैरह को। तो पहले तो वो स्कर्ट्स जो थी उनकी उतारी गई तीनों टैंकों की। उसमें से एक टैंक में गनर नहीं था, एक में लोडर नहीं, लोडर एक ही था इनके पास तीनों टैंकों के पास, क्योंकि ऑटोमेटेड टैंक है। इसमें जो लोडिंग सीक्वेंस है एमिनेशन की वो अलग होती है और वो एक्सपर्ट ही लोड कर सकता है। तो उसमें लोडर सिर्फ एक ही था तो उसने तीनों टैंकों को लोड करा। तो जब ये टैंक हमारे पास पहुंचे तो रास्ते में एक टैंक जिसमें कि कमांडर साहब खुद मौजूद थे अनिल कौल साहब, उन्होंने प्रोफिलैक्टिक फायरिंग यानी कि ये सोच के कि यहाँ पे दुश्मन हो सकता है ऐसे फायरिंग करते करते उन्होंने अपना सारा एमिनेशन खत्म कर दिया था। एक टैंक में जो था वो गोला गन के अंदर फंस गया था, वो ऑटो एक्सट्रैक्टर काम नहीं कर रहा था उसका। जब हमारे पास ये पहुंचे तो हमने इनको बोल कहा भी हमारे पास सारा दिन इस घर से फायर आया है, इस घर में उनका काफी स्ट्रांग पोजीशन है, कम से कम इसके ऊपर 2 गोले फायर करते चलें। तो उसको करने में 45 मिनट लग गए उनको, क्योंकि वो कहता है गनर कहता है जी मैं अपने गन से फायर करूंगा। उसका गोला निकाल के अपनी गन में लोड करवाया लोडर से, उसके बाद उसने जब फायर करा तो वो गोला भी जो था इतना इफेक्टिव नहीं हुआ क्योंकि घर के ऊपर से निकल गया। एक्चुअली मैंने कर्नल दलवीर को बोला, मैंने कहा भाई ये हमारे लिए ज्यादा डिमोरलाइज हो रखे हैं ये टैंक, दुश्मन को पता नहीं डिमोरलाइज करेंगे या नहीं करेंगे, लेट्स गेट आउट ऑफ इट, क्योंकि जब दिन हो जाएगा तो यहाँ से निकलना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो उस वक्त एक टैंक जो था उसने रिवर्स करा और वो गारे में फंस गया। वहाँ पर कच्ची जमीन थी, एक ग्राउंड था उसमें वो फंस गया। तो जो उनका जेसीओ इंचार्ज था वो मेरे को कहता जी इसके लिए रिकवरी की जरूरत पड़ेगी निकालने के लिए टैंक को। तो मैंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, रिकवरी बड़ी सिंपल है, हम आपको यहाँ छोड़ देंगे, कल सुबह एलटीटी वाले आएंगे और वो आपको अपने आप ही रिकवर कर देंगे। तो वो उसको गुस्सा आ गया, उसने ड्राइवर को बाहर निकाला, कहता बाहर निकलो मैं निकालता हूँ टैंक। एंड ही रिवर्स्ड इट एंड ऑलमोस्ट क्लाइम्ड ऑन अ हाउस, पूरा घर ही तोड़ दिया उसने और वहां से निकल के आ गया। फिर तीनों टैंक जो थे वो हमारे साथ आ गए।
लगभग 40 भारतीय कमांडो इस ऑपरेशन में मारे गए, कोई भी टारगेट पूरा नहीं हुआ और लुंगी पहने एलटीटी के लड़ाकों ने बुरी तरह से भारतीय सैनिकों को परेशान किया। मैंने मेजर जनरल शिवनान सिंह से पूछा कि आप एलटीटी के लड़ाकों के युद्ध कौशल को किस तरह से आंकते हैं?
पहली बात तो ये है कि वो मरने से नहीं डरते थे। जो इंसान मरने से नहीं डरता वो कुछ भी कर सकता है। किसी भी लड़ाई में जो नौजवान फौज है वो आपको जिताती है, जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो नहीं जिताते हैं। लड़ाई के अंदर एक्सपीरियंस वो होते हैं जो पहली लड़ाई में नहीं मरे होते हैं और वो इस लड़ाई में भी मरना नहीं चाहते। आप कोई लड़ाई देख लीजिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देख लीजिए, सेकंड वर्ल्ड वॉर देख लीजिए, शुरू में नतीजे नहीं आए हैं। जब एक्सपीरियंस लोग पीछे रह गए हैं और नौजवान आए हैं जिनको कि इस बात का पता ही नहीं होता कि मौत क्या होती है, वो लोग लड़ाई जितवाते हैं। तो LTT में पहली बात तो ये थी कि वो मरने से नहीं डरते थे, चाहे वो बड़ा था चाहे छोटा था। दूसरी बात यह है कि उनका लीडरशिप के ऊपर पूरे यकीन था और उनकी लीडरशिप ने उनको बेहतरीन हथियार और बेहतरीन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दिए थे। वो पब्लिक में मर्ज हो सकते थे, उनको इस बात का पूरा यकीन था कि हम हथियार छोड़ देंगे और मर्ज हो जाएंगे तो पता नहीं लगेगा हम कौन है। एंड एज फार एज टैक्टिक्स इज कंसर्न, तो गोरिल्ला टाइप की लड़ाई तो वो लड़ ही रहे थे वहां पे काफी अरसे से श्रीलंकन आर्मी के साथ। उनको रास्ते पता थे, उनको ये टैक्टिक्स पता थी, उनको कहाँ छिपना है ये पता था, कहीं पे भी जाए उनको खाना मिलता था, तो उनको कोई तकलीफ इस तरह से नहीं थी। सिवाय इस बात के कि उनको हो सकता है मरने का खतरा हो, लेकिन मैंने आपको पहले बताया कि मरने से डरते नहीं थे।
ये तो रही ऑपरेशन पवन के पहले दो दिनों की कहानी। इसके बाद भारतीय सेना वहां 3 सालों तक रही। जब वो 1990 में भारत लौटे तब तक उनके 1155 जवान मारे जा चुके थे। आज पलाली हवाई अड्डे पर काले ग्रेनाइट का एक स्मारक बना हुआ है उन भारतीय सैनिकों की याद में जिन्होंने 12 अक्टूबर 1987 को उस ऑपरेशन में भाग लिया था। रेहान फजल, BBC दिल्ली।